नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के देहरादून में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ दूसरे चरण के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स को अधिसूचित किया। भारत में ईरान के राजदूत ने ईरान के संकटकाल में विश्वसनीय और भरोसेमंद सहयोगी होने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। अमरीकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों की पूर्ण समुद्री नाकाबंदी लागू की, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। देश आज संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉ बीआर अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून से दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे टिहरी में देश के पहले 1000 मेगावाट क्षमता वाले पंप स्टोरेज प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा प्रमुख पर्यटन और आर्थिक केंद्रों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक विकास को मजबूत करेगा और पूरे क्षेत्र में व्यापार तथा विकास के नए अवसर उत्पन्न करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह परियोजना उच्च गति की कनेक्टिविटी को पर्यावरणीय स्थिरता और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के साथ अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का विकास करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाती है।
प्रधानमंत्री आज दोपहर देहरादून में आयोजित एक समारोह में दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। लगभग 213 किलोमीटर लंबा ये गलियारा 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में विकसित किया गया है। ये कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरता है, जिससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय वर्तमान 6 घंटे से घटकर लगभग 2.5 घंटे रह जाएगा। परियोजना के अंतर्गत निर्बाध उच्च गति संपर्क सुनिश्चित करने के लिए 10 इंटरचेंज, 3 रेलवे ओवरब्रिज, 4 प्रमुख पुल तथा सड़क किनारे 12 जन सुविधाओं का निर्माण किया गया है। अपने एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री देहरादून में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे नमो ऐप के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। सरकार ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ दूसरे चरण का स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स अधिसूचित कर दिया है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत निवेश वैकल्पिक निवेश कोष पर केंद्रित होगा। मंत्रालय ने कहा है कि परिचालन दिशा निर्देश और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कमेटी की संरचना उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी की जाएगी। मंत्रालय ने बताया है कि लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI अधिसूचना की तिथि से क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में योजना का संचालन शुरू करेगा। ये योजना देश के नवाचार आधारित विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारण से संबंधित एक याचिका पर केंद्र और अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार, विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा कृषि लागत और मूल्य आयोग को नोटिस जारी किया है। भारत में ईरान के राजदूत डॉ मोहम्मद फथाली ने ईरान के संकटकाल में विश्वसनीय और भरोसेमंद सहयोगी होने पर भारत सरकार तथा जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में कल शाम पत्रकारों से बात करते हुए डॉ फथाली ने इस कठिन समय में सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। पाकिस्तान में पिछले सप्ताह हुई शांतिवार्ता के विफल होने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के साथ ही अमरीकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की पूर्ण समुद्री नाकाबंदी शुरू कर दी है। ये नाकाबंदी कल शाम 7:30 बजे से प्रभावी हो गई। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि ये प्रतिबंध फारस और ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले जहाजों पर लागू होंगे। ईरान ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वह अपने जल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ @YRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉ. भीमराव आम्बेडकर की 136वीं जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आज सुबह डॉ. आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में जन्मे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में समर्पित कर दिया। उन्होंने महिलाओं, मजदूरों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए लगातार काम किया। उनकी सोच और प्रयासों ने एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की नींव रखी, जो भारत के संविधान में साफ दिखाई देती है। साथ ही संविधान के निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका रही है। डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान आर्थिक नीतियों, बुनियादी ढांचे और संवैधानिक कानून सहित कई क्षेत्रों में रहा है। इसी वजह से उन्हें एक महान राष्ट्र निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, जो एक न्यायसंगत और समान भारत बनाने के लिए समर्पित थे। उन्हें उनके योगदान के लिए वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज का दिन उनके महान कार्यों, खासकर सामाजिक न्याय, समानता और भारतीय संविधान के निर्माण में उनके योगदान को याद करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आनंद कुमार के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने आज डॉ. आम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात में गांधीनगर के लोकभवन में आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सामाजिक समरसता महोत्सव में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। पंजाब में आज बैसाखी का त्यौहार श्रद्धा, उत्साह और भाईचारे की भावना के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। वर्ष 1699 में आज ही के दिन सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। एक रिपोर्ट।
वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला।
हजारों श्रद्धालु श्री आनंदपुर साहिब में मौजूद गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहिब में नतमस्तक हो रहे हैं। यही वह धार्मिक स्थान है जहां सिख पंथ की स्थापना की गई थी। देश भर के गुरुद्वारों में भी खालसा स्थापना दिवस बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। भारत से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु खालसा साजना दिवस और बैसाखी मनाने के लिए पाकिस्तान में ऐतिहासिक गुरुद्वारों में पहुंचे हैं। यह त्योहार हमारे किसान भाइयों के लिए भी खास है, क्योंकि वे आज से ही अपने खेतों में गेहूं की फसल की कटाई शुरू करते हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
जम्मू कश्मीर में जम्मू नगर निगम तथा जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड, पर्यटन और सूचना विभागों के समन्वय से 3 दिवसीय स्वच्छ तवी महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। बैसाखी के अवसर पर यह कार्यक्रम चौथे तवी पुल पर आयोजित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ये महोत्सव स्थानीय परंपराओं का जश्न मनाने के साथ साथ भविष्य के लिए तवी नदी को स्वच्छ रखने की वचनबद्धता को भी दर्शाता है। जम्मू नगर निगम ने जम्मू के सभी निवासियों को इस उत्सव में शामिल होने और शहर को और अधिक स्वच्छ व सुंदर बनाने में अपना योगदान देने के लिए आमंत्रित किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं गुलशन रैना।
आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 216 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे राजस्थान रॉयल्स 159 रन पर ही सिमट गई। सनराइजर्स के लिए प्रफुल्ल हिंगे ने 4 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली हमारी श्रृंखला पीपल्स पद्म के अंतर्गत आज हम महाराष्ट्र के किसान श्री श्रीरंग देववा लाड से बात करेंगे। श्री लाड ने कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए काम किया है। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
मैंने प्रयोग किया है, कर्नाटक में इंडी गांव है, वहाँ भी मैंने प्रयोग किया, जालना में भी। अभी मुझे मन में कि अनाज के पर जाएंगे, पैसा होना चाहिए, अनाज भी होना चाहिए।
ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे आकाशवाणी समाचार के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुना जा सकता है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी भारत, कर्नाटक, केरल और माहे के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ में आज लू चलने की भी संभावना व्यक्त की है। अगले 3-4 दिन में आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, गुजरात, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी तथा कारैक्काल के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद कनक। भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर आज अखबारों ने उन्हें नमन किया है। महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन पर प्रधानमंत्री का बयान लोकसत्य और पंजाब केसरी के पहले पन्ने पर है। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा महिला आरक्षण कानून। लोकसत्य में भी प्रधानमंत्री का वक्तव्य है महिला आरक्षण 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय। दैनिक जागरण ने हुरमोज में अमरीकी नाकाबंदी और ईरान के पलटवार को अपनी हेडलाइन बनाया है। जनसत्ता लिखता है अमेरिका ने हुरमुज समेत ईरान के सभी जलमार्गों की नाकेबंदी की, तेहरान ने फारस और ओमान की खाड़ी के सभी बंदरगाहों को धमकी दी। हिंदुस्तान ने अमेरिका ईरान वार्ता विफल होने पर फिर युद्ध को हवा शीर्षक से संपादकीय में लिखा है दुनिया में आर्थिक तनाव का पारा फिर चढ़ने लगा है। विश्व स्तर पर तेल की कीमतों में फिर उछाल का दौर शुरू हो गया है। भारत में सामान्य पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। सवाल और गहरा गया है कि भारत तेल की कीमतों को कब तक रोकेगा। नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग कर रहे श्रमिकों के प्रदर्शन और तोड़फोड़ को अनेक अखबारों ने अपनी पहली खबर बनाया है। हिंदुस्तान ने इस प्रदर्शन की वजह से फरीदाबाद से दिल्ली नोएडा तक जाम लगने का समाचार सचित्र दिया है। अमर उजाला लिखता है श्रमिकों ने किया हिंसक प्रदर्शन, 300 से अधिक कंपनियों में तोड़फोड़, 20 से अधिक गाड़ियां फूकी। देशबंधु की सुर्खी है नोएडा में 400 फैक्ट्रियों में तोड़फोड़। मौसम विभाग का पूर्वानुमान राजस्थान पत्रिका की प्रमुख खबर है। अलनीनो इफेक्ट, इस साल सामान्य से 8% कम बारिश के आसार। दैनिक भास्कर की टिप्पणी है तपेगा ज्यादा बरसेगा कम, जून से सितंबर के बीच 92% ही बारिश। दिल्ली से देहरादून अब 2.5 घंटे में, आज पीएम मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे की शुरुआत, नवभारत टाइम्स में है। 8 दशक तक देश के संगीत जगत पर राज करने वाली सुविख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले के अंतिम संस्कार का चित्र देते हुए जनसत्ता ने भावुक कर देने वाली पंक्तियां लिखी हैं। अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, काश। अमर उजाला ने स्वास्थ्य शीर्षक से जानकारी दी है विटामिन डी की कमी से बढ़ रहा डायबिटीज का जोखिम। एम्स के अध्ययन के हवाले से पत्र लिखता है 61% मरीजों में विटामिन डी का स्तर बहुत कम मिला। विटामिन डी की कमी होने पर 8 गुना तक बढ़ सकता है डायबिटीज का खतरा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के देहरादून में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ दूसरे चरण के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स को अधिसूचित किया। भारत में ईरान के राजदूत ने ईरान के संकटकाल में विश्वसनीय और भरोसेमंद सहयोगी होने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। अमरीकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों की पूर्ण समुद्री नाकाबंदी लागू की, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। देश आज संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉ बीआर अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।